जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय। सभी लोग प्रेम से गाइए,
जय राधा बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन
जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे,
जय
जय राधा माधव राधा माधव राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
हरे
हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे
जय राधा
गिरिधरी राधा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा
जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा
जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय
जय
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद। हरे वंशी विभूषित करा नवनीरदाभार पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्वहं न जाने। प्रचोदिताजे न पुरा सरस्वती वितन्वताज ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी ययिमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमूश पूरुष भुङ्क्तेर्गुणनशो रसषोडशात्मक सोलङ्क श्रेष्ठ भगवान वचांसि में। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित इस जन्माष्टमी महामहोत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है कि आज अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परब्रह्म परम लीलामयी गोलोकधारी गोवर्धन धारी बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। वैसे तो भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है, परंतु हम हमारी भाषा में जन्माष्टमी जन्मदिन इत्यादि कहते हैं। तो कमलोचन प्रभु ने आज्ञा दी थी कि आप यहां पर भगवान श्री कृष्ण की नटखट लीला का वर्णन करना है, परंतु शाम को वनमाली प्रभु भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देने वाले हैं यदा यदा ही धर्मस्य। कमलोचन प्रभु गोवर्धन लीला सुनाएंगे, तो मैंने सोचा कि आज भगवान का जन्म है इसलिए जन्म लीला होनी चाहिए। आज की कथा आज का प्रवचन भगवान श्री कृष्ण को मैं समर्पण करता हूं और उन्हीं से शक्ति प्राप्त करके कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूं। श्रीमद् भागवतम में दसम स्कंद में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च उभय वंशानां चरितं परम अद्भुतम। परीक्षित महाराज के जीवन में 7 दिन थे, उस 7 दिन में से चौथे दिन को शाम को परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं के सुखदेव गोस्वामी अब तक आपने मुझे सोम वंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले एक से एक राजा महाराजाओं के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, परंतु अब उसमें मेरी अलम दृष्टि हो रही है, अब मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं। यदश धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणी संशयन। प्रभु यदुवंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण की भगवान विष्णु की गाथा सुनाइए, गायत्र विष्णु गाथा। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावन यदुवंश में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण ने जो जो लीला की है ये सब लीला का वर्णन करो। और हे सुखदेव गोस्वामी, संसार में ऐसा कौन होगा जो भगवान श्री कृष्ण की लीला को सुनना नहीं चाहेगा। भगवान कृष्ण की लीला सभी लोगों के लिए परम मंगलमय है। इस संसार में जिन जिन लोगों को भवरोग लगा है, जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण की कथा भव औषध औषधि के समान है। निवृत्त तर्षे उपगीय मानाद भव औषधाक्षोत्र मनोविरामात, जो मुक्त है ऐसे लोगों के लिए भी भगवान की कथा उत्तम है। मुमुक्षु लोग भी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनकर आनंद प्राप्त करते हैं। जो इस संसार में विषयी लोग हैं, जो विषयों में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी यह कथा मन को आनंद देने वाली है। तो बताइए, सभी लोगों के लिए इतनी उत्तम कथा भगवान श्री कृष्ण की है तो इस संसार में ऐसा कौन है। कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजित विना पशुगनात, इस संसार में ऐसा कौन है जो कृष्ण की कथा नहीं सुनना चाहेगा। एक व्यक्ति है जो कृष्ण की कथा नहीं सुनेगा और वो है कसाई। कृष्ण की कथा नहीं सुनने वाले को परीक्षित महाराज कसाई कह रहे हैं। जितने लोग कृष्ण की कथा बैठकर नहीं सुनते हैं वे कसाई हैं, हम नहीं, ये भागवत और परीक्षित महाराज कह रहे हैं। पशुगनाथ, कभी कभी प्रश्न होता है कि कसाई तो उसे कहा जाता है जो बकरे को मारता है, गाय को काटता है, तो कथा नहीं सुनने वाला तो बेचारा किसी को नहीं मारता है, तो परीक्षित महाराज उसे कसाई क्यों कह रहे हैं, पशु घाती क्यों कह रहे हैं। इसका उत्तर यह है, कसाई तो बहुत अच्छा है क्योंकि वह प्राणी को मारता है, परंतु कृष्ण कथा नहीं सुनने वाला मनुष्य अपने आत्मा को मारता है, अपनी आत्मा का हनन करने वाला है। ये तो कसाई से भी बदतर गया गुजरा है जो कृष्ण कथा नहीं सुनता है। और जन्माष्टमी जैसे उत्सव में, जन्माष्टमी के दिन सभी भक्तों का कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा सुने। आपको पता होगा श्री प्रभुपाद जी जब जन्माष्टमी का महोत्सव होता था तो अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर स्वयं खुद अपने हाथ से लिखी हुई पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णा बुक जो है वो पूरा दिन पढ़ाते रहते थे। और उनके अनुगत्य में हम भी आज पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण का श्रवण, लीला का श्रवण करेंगे। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि कृष्ण कथा सुनाइए, वो कृष्ण जिन्होंने मेरे पितामह की, पांडवों की कुरुक्षेत्र की भूमि में रक्षा की। कहते हैं, पितामह में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले, मेरे पितामह पांडव कुरुक्षेत्र की भूमि में जिसके सामने कौरव थे और कौरव में भी एक से एक योद्धा पितामह पितामह भीष्म थे, और अमरंजये देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले एक से एक योद्धा कौरवों की सेना में थे, परंतु कृष्ण की कृपा से मेरे दादा मेरे पितामह बच गए। एक से एक योद्धा कर्ण जैसे महावीर अति रथी पितामह भीष्म प्रतिदिन 10,000 सेनापतियों को मारते थे। ऐसे लोगों, ऐसे बड़े बड़े महारथियों के सामने हमारी जो सेना थी, हमारे दादाओं की सेना थी। कहते दुरत्यय कौरव सैन्य सागरम, कौरव की सेना दुरत्य एक सागर के समान थी और हमारे पितामह की, हमारे पांडवों की सेना एक नदी के नाले के समान थी, कुछ नहीं था। चुटकी में हमारे दादाओं को पितामह को मार सकते थे, परंतु उस कृष्ण की कृपा से वह दुरत्य सैन्य सागर व सागर के समान सेना को हमारे पितामह एक गाय के बने हुए खुर को जैसे बालक पार कर लेता है वैसे पार कर दिए कृष्ण की कृपा से। इतना ही नहीं, परीक्षित महाराज हाथ दिखाकर कहते हैं कि जो मैं आज आपके सामने बैठा हूं ना, द्रोणस्य तच्चास्म हरे भी रक्षिताम संतान बीजम कुरु पांडवानाम, मैं अंतिम वंशधर था मेरे कुरु वंश का, और यह शरीर कृष्ण की कृपा से आज यहां पर बैठा है। यदि कृष्ण न होते तो मैं आज आपके सामने उपस्थित नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की उत्तरा के गर्भ में रक्षा की थी। ऐसे कृष्ण की कथा सुनाइए जिन्होंने हम पर अनेक अनेक उपकार किए। वीर्याणि तस्या अखिल देह भाजा, अंतर वही पुरुष काल रूपे, वह भगवान जो सभी लोगों के हृदय में पुरुष परम पुरुष परमात्मा के रूप में विराजमान है, और वही भगवान जो भजन नहीं करते हैं ऐसे लोगों के लिए काल के समान है। गीता में भगवान ने जो काल का रूप दिखाया है, प्रयच्छतो मृतामृतम च माया मदुस्यस्य वदस्व विद्वन, वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ पर ब्रह्म सच्चिदानंद मई विग्रह मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आज से 5000 वर्ष पहले लीला किए, वह कृष्ण की कथा सुनाई। और इतना ही नहीं, रोहिणिया स्तनिया प्रोक्तो रामा शंकर शनस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कितो देहांतर विना, यह भी साथ में सुनाइए कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम एक थे, एक शरीर में थे, परंतु दो माता के गर्भ में कैसे गए, ये सब सुनाइए। कस्मान मुकुंद भगवान पितृ गेहात व्रजम गत, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल क्यों चले गए, मुक्ति देने वाले मुक्ति ददाती इति मुकुंद, मुक्ति देने वाले मुकुंद इस संसार को संसार के भय को दूर करने वाले, एक बार भी कृष्ण का कोई नाम ले लेता है तो गोविंद दास जी कहते हैं कि वह सभी पूरे जीवन के लिए भय से मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान कंस के डर से गोकुल में चले गए, बताइए ऐसा क्यों, मथुरा से गोकुल क्यों गए। रजे वसन किम करोद मधुपुर्यांच केशव, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में कितने साल तक रहे, मथुरा में कितने साल तक रहे, द्वारका में कितने साल तक रहे, और यदुपुर्या सहवासित पत्नियों कत्य भवन प्रभो, और द्वारका में रहकर भगवान श्री कृष्ण ने कितनी पत्नियों के साथ विवाह किया, यह भी बताइए। सब कुछ देखिए, एक श्रोता की इस प्रकार से स्थिति होनी चाहिए। ये तो प्रवचन शुरू होता है, आधे प्रवचन के बाद आकर बैठते हैं। परीक्षित महाराज ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि कृष्ण की लीला से एक पॉइंट भी बाकी न रह जाए, और फिर भी अंत में कहते हैं कि एत धन्य सर्व में, मैंने सब कुछ पूछ लिया है लेकिन फिर भी यदि पूछना बाकी रह गया तो हे मुने कृष्ण विचेषितम, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना कुछ है वह सब कुछ बता दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी ने पूछा कि चार दिन चार रात से तुम बिना खाए पिए भूखे प्यासे कथा सुन रहे हो, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी है, भूख नहीं लगी है, आप भी 12 बजे तक सुबह से लेकर अब तक भूखे बैठे हो, क्या प्यास नहीं है। जो परीक्षित महाराज को आधे दिन पर प्यासे रहने पर श्रृंगी ऋषि का सम्यक ऋषि का अपराध किया था, वही परीक्षित महाराज यहाँ पर चार दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। ऐसे परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न पूछा कि आप पानी पी लो, तो परीक्षित महाराज कहते हैं ने साति दुही सा सुनमाम त्यक्तोदम अपि न बाधते, सुखदेव गोस्वामी मुझे प्यास नींद और भूख बाधित नहीं कर रही, क्यों ऐसा क्या मिल रहा है तुम्हें ताकि तुम्हें भूख और प्यास नहीं लगी है। तो कहते पीवन त्वाम मुखाम भोजम चूतम हरि कथा अमृतम, प्रभु आपके मुख से जर्जर 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 झरता हुआ अमृत के समान कथा अमृत पी रहा हूं, तो जिसे अमृत मिल रहा है उसे पानी की प्यास लग सकती है, जो अमृत का आस्वादन कर रहा हो उसे साधारण पानी की प्यास कहां से लगे, प्रभु आप कृष्ण की कथा सुनाइए। परीक्षित महाराज की जिज्ञासा और जिज्ञासा को देखकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए, कहा कि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम, हे राजर्षि हे परीक्षित, तुम्हारी बुद्धि जहाँ पर टिकी हुई है, तुम्हारी बुद्धि ने जो निश्चय किया है वो परफेक्ट है। जीवन में सभी व्यक्ति को कृष्ण की कथा निरंतर सुनती रहनी चाहिए मृत्यु पर्यंत। इसलिए हम गाते हैं भागवत शुरू करने से पहले नित्यम भागवत सेवया, जन्म पर्यंत मृत्यु पर्यंत कृष्ण कथा होनी चाहिए। और सभी लोगों ने यही जिज्ञासा की है। परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं गायत्री विष्णु गाथा, और नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि जिज्ञासा करते हैं कि अथ क्या ही हरेर निधिमन अवतार भगवत कथा, हे सुत गोस्वामी कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और पुरुषान त्रिन पुनाति ही, यह प्रश्न सुनकर इस प्रश्न का उत्तर सुनकर तीन प्रकार के लोग पवित्र हो जाएंगे। कौन कौन, यह प्रश्न का उत्तर देने वाला, इस प्रश्न का उत्तर जिज्ञासा करने वाला और ये प्रश्न का उत्तर सुनने वाला, ये तीनों लोग वैसे पवित्र हो जाएंगे जैसे गंगा में स्नान करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अरे गंगा में स्नान करने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, और गंगा से पवित्र होना है तो ट्रेन में बैठकर हरिद्वार जाना होगा और वह भी मन ठीक रखना होगा। परंतु यदि कोई केवल मीरा रोड में आकर कृष्ण कथा सुन ले तो गंगा जितना पवित्र हो जाएगा। यत पाद सलिलम यथा, गंगा जो पूरे भूमंडल को तीनों लोगों को पवित्र करती है वो व्यक्ति स्वयं पवित्र होगा और कथा सुनने वाला तीनों लोगों को पवित्र करेगा। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, कथा सुनने वाला जिस जगह पर जाता है उस जगह को तीर्थ बना देता है। तो इतना कह के सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ में भूमि द्रुप्त नृप व्याज, ये भूमि आक्रांत भूरी भारण, आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में इस संसार में कई ऐसे राजा हो गए थे जो आसुरी वृत्ति के थे। जन्म से असुर नहीं थे परंतु आसुरी लोगों का संग करने के कारण उनकी वृत्ति आसुरी हो गई, और इसके कारण संसार में जितने भी यज्ञ होते थे, ध्यान होता था, भजन भक्ति का जो भी साधन होता था ये सब बंद करवा दिया। क्योंकि असुरों का यह स्वभाव होता है, जब असुरों के पास शक्ति आती है तो सत कार्य कराना बंद कर देते हैं। तो संसार में जो भी यज्ञ हवन ध्यान इत्यादि होता था वह सब बंद करवाया और पाप कराना शुरू किया। गाय को काटना, मांस खाना, सभी प्रकार के पाप होने लगे, और पाप होने के कारण इस ये संसार में हम जिसके ऊपर बैठते हैं, जिसके ऊपर कार्य करते हैं, ये पृथ्वी माता है, भगवान की पत्नी है। इस पृथ्वी पर बहुत बहुत बोझ है, बहुत बहुत वजन है, परंतु पृथ्वी को इसका वजन नहीं लगता है। इस पृथ्वी पर हजारों पर्वत हैं, हजारों नदी हैं, बिल्डिंग है, पेड़ है, मनुष्य है, जीव है, लेकिन यह सब का वजन माता पृथ्वी को नहीं लगता है। परंतु यदि कोई इस पृथ्वी का पुत्र, यदि कोई मनुष्य यहाँ पर पाप करता है तो माता पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। कितना कष्ट, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आक्रांत, दुख भी लिख सकते थे, कष्ट भी लिख सकते हैं, परंतु आक्रांत लिखा है, इसका अर्थ बहुत कष्ट, इसका कोई पारावार, लिमिट से बाहर पाप हो गया और इससे पृथ्वी भारी हो गई। महाभारत के प्रसंग में देखिए, यक्ष ने युधिष्ठिर को जब पूछा कि युधिष्ठिर महाराज इस संसार में सबसे बड़ा बोझ वजन किसका है, तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं पाप भूमि ते भारी, पाप इस पृथ्वी पर भूमि से भी भारी है। पाप बड़ा, पृथ्वी पर वजन बड़ा, पृथ्वी दुखी हुई और दुखी होकर ब्रह्माणम शरणम ययो, इस संसार में सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी के शरण में कैसे गई, गो भूतवा अश्रुमुखी, कहते हैं कि गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। गाय का रूप पृथ्वी ने इसलिए लिया क्योंकि गाय को देखकर स्वाभाविक दया आ जाती है, तो ब्रह्मा जी को दया आ जाए इसलिए पृथ्वी ने गाय का रूप लिया और अश्रुमुखी आंखों से अश्रु निकालती हुई माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना सारा दुख सुनाया। और ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी का ब्रह्मा तद उपधार्यार्थ, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का सारा दुख सुना। आज के पुलिस कमिश्नर के तरह या आज के बड़े व्यक्ति की तरह नहीं, कोई व्यक्ति यदि किसी के सामने अपना दुख गाता है तो कहते चलो बंद करो अभी। इस संसार के सबसे बड़े व्यक्ति, संसार के सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा के पास गई, और सबसे बिजी व्यक्ति, संसार के जितने भी मैनेजमेंट, जो भी कार्य ब्रह्मा के हाथ में है, उसके पास पृथ्वी गई, फिर भी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सारी बात सुनी, निग्लेक्ट नहीं किया। भक्तों के लिए यह उपदेश है, यदि कोई अपना दुख गाते हैं तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। भक्तों के ऊपर यह जिम्मेवारी है क्योंकि भक्तों के सामने कोई दुख नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे, और उनका दुख सुनकर उसे निर्णय देना चाहिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो, मंदिर आइए या कथा सुनिए। तो ब्रह्मा तद उपधार्यत, ब्रह्मा ने पृथ्वी की सारा दुख सुना और कहा कि हे देवी, ऐसे तो आपका दुख सही है आपको बहुत दुखी हो, परंतु आप जिस स्थान पर आए हो यह स्थान गलत है, गलत एड्रेस पर आप आ गई हो। क्योंकि मुझे भी जब कष्ट होता है, मैं जब दुखी हो जाता हूं तब मुझे भी भगवान के पास जाना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हारा दुख दूर नहीं कर पाऊंगा, यदि तुम्हारा दुख दूर करना है तो चलो मेरे साथ भगवान विष्णु के पास। ब्रह्मा जी शील सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हुए, परंतु भगवान के पास वैसे ही मुंह लटकाए नहीं जाना चाहिए। भगवान के पास नाचते हुए, गाते हुए, कीर्तन करते करते जाना चाहिए। किसी के मातन में या शमशान यात्रा में जाते हैं, इसे नहीं जाना चाहिए। प्रसन्न चित्त, प्रसन्न होकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौर निताय की, शैल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। तो भगवान के पास जब जाते हैं तो प्रसन्न चित होकर हंसते हुए कीर्तन करते करते जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने 33 करोड़ देवताओं को बुलाया कि यहां पर आओ, भगवान के पास जाना है, कीर्तन करते करते जाएंगे। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि त्रिनयन, तीन नयन वाले शिव जी को भी बुलाया, उसे स्पेशल फोन किया ब्रह्मा जी ने। क्योंकि कीर्तन में तब तक आनंद नहीं आता है जब तक नाचना न हो, और शिव जी नाचने में सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण के बाद यदि कोई अच्छा नाचने वाला है तो वह है शिव जी। कृष्ण का एक नाम नटनागर है और शिव जी का नाम नटराज है, नटवर। कृष्ण का एक नाम नटवर है और शिव जी का एक नाम नटराज है। दोनों नट, दोनों नाचने में श्रेष्ठ है। और शिव जी सभी प्रकार के नाच जानते हैं, हम तो एक ही नाच जानते हैं केवल, महामंत्र शुरू होता है तो केवल। लेकिन शिव जी सभी प्रकार के, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। प्रलय करना होता है तो शिव जी ऐसा नाचते हैं, ऐसा नाचते हैं, शास्त्र में वर्णन है। यह ब्रह्मांड दिग्गजों के बैलेंस पे खड़ा है, बड़े बड़े हाथी दिग्गज के बैलेंस पर यह ब्रह्मांड खड़ा है। ऐसे हाथियों को शिव जी अपने त्रिशूल में खच 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 करके डालकर ऐसा नाचते हैं, ऐसा नाचते हैं, उस नाचने में प्रलय हो जाता है। तो ऐसा नाचने के लिए शिव जी को नहीं बुलाया था, प्रेम से नाचने। कुछ लोग हमारे भक्त में भी ऐसा नाचते हैं, प्रकाश प्रभु जैसे ऐसा घूमते हैं, ऐसा नाचते हैं कि दूसरे लोग बंद हो जाते हैं, फिर वही अकेला नाचता है। तो उदंड नृत्य इसे कहते हैं। उदंड नृत्य नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने कुछ अलग नृत्य होता है। तो शिव जी को बुलाया, 33 करोड़ देवता आए और ब्रह्मा जी और माता पृथ्वी को लेकर भगवान श्री विष्णु के पास शील सागर के तट पर गए। शिव सागर के तट पर जाकर सब लोग भगवान को प्रार्थना करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुरुष सूक्त नामक स्तुति करने लगे। पुरुष सूक्त एक वेदों की स्तुति है जिससे भगवान प्रकट होते हैं। सभी देवताओं ने स्तुति की लेकिन फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तब जाकर ब्रह्मा जी समाधि में बैठे और गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेदास्त दशानुवाच। ब्रह्मा जी जब समाधि में बैठे तब भगवान विष्णु ने केवल ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। और ब्रह्मा जी को दर्शन देकर क्या कहा, भगवान देखिए, ध्यान रखिए, शिरोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, कहते हैं कि पुरे व पुंसा व्रत ध्रुतो धरा ज्वरो भवत भी अंशेर्य दुशुद्ध पुजन्म जन्यताम। हे ब्रह्मा जी, आप जिस काम के लिए यहां पर आए हो, जिस दुख को लेकर आप यहां पर आए हो, यह सारी बात पूरा एव, यह सारी बात पहले से ही गोलोक धाम में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। सभी भक्तों को यहां पर एक दर्शन मिलता है कि विष्णु और गोलोक धाम में रहने वाले बजेंद्र नंदन साक्षात कृष्ण दोनों अलग है। तत्व से एक है परंतु अलग है। गोलोकधारी कृष्ण, गोलोक वृंदावन में रहने वाले जो कृष्ण है बजेंद्र नंदन, वे साक्षात भगवान है और भगवान विष्णु उनके अवतार है, पुरुष अवतार। तो विष्णु कह रहे हैं कि वह साक्षात कृष्ण को सब कुछ पता है और वे बहुत जल्द पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अपने धाम से उतरकर पृथ्वी में आने वाले हैं। अपनी भाषा में समझाऊं तो भगवान विष्णु ने ऐसा ही कहा कि हे ब्रह्मा, अब तक तो मैं अवतार लेकर आता था, नरसिंह, वामन, वराह, राम, अब तक तो मैं आया, परंतु इस बार पृथ्वी को अलंकृत करने के लिए, पृथ्वी को आनंद देने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधुओं को आनंद देने के लिए साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण उतरने वाले हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। तो आप एक काम करो, सभी देवताओं को कह दो कि अपने अपने अंश से मथुरा और गोकुल में जन्म ले ले, वे स्वयं न जाए, नहीं तो ये सब एक सब जितना भी डिपार्टमेंट है बंद हो जाएगा, इसलिए अंश अंश के साथ अपने अंश से जन्म ले ले। समाधि टूटी, ब्रह्मा जी खड़े हुए और सभी देवताओं को बुलाकर कहा कि हे त्रिदशा, हे देवतागणों, देवताओं को त्रिदशा कहा गया है, त्रि का अर्थ है तीन और दश का अर्थ है दस, अर्थात तीस, तीस करोड़, तीस करोड़ देवता है, वास्तव में तीस नहीं तैतीस करोड़ देवता है, परंतु शास्त्र में भी राउंड फिगर कहते हैं, जैसे हम राउंड फिगर चलाते हैं वैसे भागवत गीता में भी राउंड फिगर रख रहे हैं, त्रिदशा उवाच देवता, जैसे हम सिग्नेचर करते हैं वैसे शास्त्र में भी बड़े बड़े देवता सिग्नेचर करते हैं, जैसे इंद्र का नाम है शक्र, अरे गुरु महाराज कहते हैं इंद्र जब साइन करते होंगे तो केवल शक्र लिखते होंगे, शक अर्थ होता है शत, सो, और क्र का अर्थ होता है यज्ञ, सो यज्ञ करके व्यक्ति इंद्र बनता है, इसलिए इंद्र को शक्र कहा जाता है। तो ये राउंड फिगर, संक्षिप्त सिग्नेचर, ये सब कुछ पहले से चलता आया है, आज की बात नहीं है। तो सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब लोग अपने अपने अंश से गोकुल और मथुरा में जन्म ले लो, क्योंकि बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस बार आने वाले, इसे लीला में सहायता करने के लिए और अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए आप सब। अब इतना कह के और भी आगे कहा कि वासुदेव गृह, सभी देवताओं ने पूछा कि भगवान कृष्ण आएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कहां आएंगे, कहते हैं वासुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर, भगवान परम पुरुष पुरुषोत्तम वासुदेव के गृह में, वसुदेव के गृह में देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे, तो उसको प्रसन्न करने के लिए आप सब लोग वहां पर उपस्थित हो जाओ। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर सभी देवता लोग अपने अपने धाम में चले गए। देखिए बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है, इति आदिश्य अमर गणान प्रजापति पतिर विभु आश्वास्य च महिम गर्भिम स्वधाम परमम ययो। ब्रह्मा जी ने सबको आज्ञा देकर सभी देवता लोग भगवान की सेवा के लिए निकल पड़े, परंतु ब्रह्मा जी भगवान की सेवा के लिए नहीं गए, स्वधाम परमम ययो, ब्रह्मा जी अपने धाम में चले गए, पृथ्वी अपनी जगह पर चली गई, सभी देवता भगवान की सेवा करने के लिए चले गए सेवा में, परंतु ब्रह्मा जी सेवा में नहीं गए, स्वधाम परमम ययो, ब्रह्मा जी अपने धाम में चले गए। इसीलिए आगे चलकर ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा अपराध होगा। यदि देखिए इस संसार में भी कभी कभी व्यक्ति मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो केवल सेवा देना ही जानते हैं, सेवा करना नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा सर्वप्रथम जीव है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, भगवान ने ब्रह्मा को डायरेक्ट सर्वप्रथम ज्ञान दिया, ऐसा ब्रह्मा भी देखो कितना माया में मोहित हो गए, स्वयं सेवा नहीं की, दूसरों को सेवा दे दिए। इसीलिए भगवान जब बड़े होंगे और ब्रह्मा जी कृष्ण को देखने के लिए आएंगे, भगवान भोजन थाली पर भोजन कर रहे होंगे, तब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की लीला को देखकर विस्मित हो जाएंगे और विस्मित होकर भगवान कृष्ण का अपराध करेंगे, बछड़े को चुरा कर लेकर जाएंगे, ग्वाल बाल को चुरा कर लेकर जाएंगे, और तब भगवान को पता चलेगा, ब्रह्मा जी को पता चलेगा, तब ब्रह्मा को बहुत अफसोस होगा। क्यों है, क्यों यह हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में नहीं लगे। तो सभी जो लीडर है, जो मैनेजमेंट में है, उसे जानना चाहिए कि हम भी एक सेवक है। व्यक्ति जब भक्ति में आगे बढ़ जाता है तो सोचता है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु वास्तव में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, दीक्षा मिलती है, तब वह दास बनता है, सेवक बनता है। तो सेवा करना नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो हमसे भी अपराध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने धाम में गए, सभी देवता अपने अपनी जगह पर चले गए। सुखदेव गोस्वामी अब मथुरा की कथा सुनाते हैं। कहते हैं शूर सेनो यदुपति मथुराम आसतपुरी मथुरा शूर सेनाश्च विषयान बुभुजे पुरा। अब ये सारी कथा मथुरा में लेकर चलते हैं और मथुरा भगवान यत्र नित्यम सम्मितो हरि, जहां पर भगवान नित्य निवास करते हैं, ऐसे मथुरा की बात कर रहे हैं कि उस मथुरा में विष्णु वंश में यदु वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था देवगर्भ। इस देवगर्भ राजा के का पुत्र हुआ शूरसेन। शूरसेन की पत्नी थी मरीषा और इसके 15 संतान थे, श्रुत देवा, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा, राजादी देवी और कुंती महारानी, ये 5 पुत्री और देवभाग, देवश्रवा, अष्टक, कुकुचक्र, वत्सधारक, श्रृंजय, श्याम, शमीक, गंडश और वसुदेव, ये 10 पुत्र थे। तो शूरसेन के 10 पुत्र और उनमें एक वसुदेव थे। वसुदेव का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि ये वसुदेव का एक नाम आनक दुंदु भी था, क्योंकि मरीचा के गर्भ से जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तब देवता लोग आकाश में प्रकट हुए और आनक दुंदुभी नामक बाजा बजाया और बाजा बजाकर देवताओं ने आकाशवाणी की कि यह बालक जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभी। परम गुणशाली, सर्व गुण संपन्न थे और परम सुंदर थे। यह वसुदेव जी की 13 पत्नी थी, हम तो एक ही दो ही जानते हैं, रोहिणी और देवकी। वसुदेव पहले के राजा महाराजा कितना भी विवाह कर सकते थे, चित्रकेतु महाराज हजारों करोड़ों विवाह किए थे, क्षत्रिय विवाह कर सकते हैं। तो वसुदेव की 13 पत्नी इंदिरा, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, सुतनु, शांति देवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृग देवी, उपदेवी, वड़वा और रोहिणी, उनमें रोहिणी सबसे बड़ी थी। 13 पत्नी वसुदेव की थी और वसुदेव जी 14वां विवाह करने के लिए अंधक वंश में जन्म लेने वाले राजा पुनर्वसु के पुत्र आहुक हुए। आहुक के 2 पुत्र अग्रसेन और देवक। अग्रसेन के कुल 13 संतान हुई, 4 पुत्री और 9 पुत्र। 4 पुत्री का नाम कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपालिका और 9 पुत्र न्यग्रोध, सुतान, आनका, शंक, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्ध तुष्टि, सुतुष्टिमान और कंस। उग्रसेन के 10 पुत्र और उनमें से सबसे बड़ा था कंस। और उग्रसेन के भाई थे देवक और देवक के 4 पुत्र और 7 पुत्री। देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित के 4 पुत्र थे और सहदेवी, शांति देवी, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी और देवकी, ये 7 कन्या थी और देवकी सबसे छोटी थी। तो शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह राजा देवक की पुत्री देवकी के साथ होने जा रहा था, 14वां विवाह। और कहां पर, किस जगह पर, कहते मथुरा में। कहते ये दोनों मथुरा के रहने वाले थे, हाँ, वसुदेव जी भी मथुरा के रहने वाले और देवकी भी मथुरा की रहने वाली। प्रश्न होता है एक ही गांव के रहने वाले विवाह कैसे किए। आज भी हमारे संसार में, हमारे भारतवर्ष में यह संस्कृति है कि एक ही गांव के लोगों का विवाह नहीं होता है, परंतु मथुरा एक ऐसा समृद्ध राज्य था, इतना सुख था और ऐसा राज्य चल रहा था। कहते हैं कि तब लोग यह कहावत कहा करते थे कि मथुरा की बेटी और मथुरा की गाय कर्म फूटे तो बाहर जाए। मथुरा का विवाह मथुरा में ही और गलियों का संबंध होता था। एक गली वाले उसी गली वाले के साथ विवाह नहीं कर सकते थे, परंतु एक गली वाले दूसरे गली वाले के साथ विवाह कर सकते थे, गलियों का संबंध। तो मथुरा के ही दोनों रहने वाले वसुदेव जी और देवकी। और वो मथुरा कैसी है, सुखदेव गोस्वामी का मथुरा के ऊपर से मन नहीं भर रहा है। राजधानी तत साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। वह मथुरा जिस मथुरा को छोड़कर भगवान एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। इसलिए सभी भक्त सब लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग वृंदावन में रहे। चैतन्य महाप्रभु ने जब राय रामानंद को पूछा कि जीव का अंतिम वास कहां पर होना चाहिए, ये गृहस्थ ब्रह्मचारी ये सब कुछ छोड़कर वानप्रस्थ लेकर कहां पर रहना चाहिए, तब राय रामानंद ने महाप्रभु की शक्ति से ही उनके ही मुख से उत्तर दिया कि महाप्रभु जीव का अंतिम वास वृंदावन होना चाहिए। सभी भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि हम वृंदावन में रहे, क्यों? क्योंकि वृंदावन में आज भी भगवान उपस्थित है। इसलिए हमारे ब्रज के कवि ब्रज के भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान से, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज को कुलगाव के वारन। हे प्रभु, इस जन्म के बाद मृत्यु के बाद यदि मुझे मनुष्य का शरीर देना हो तो मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूं कि मनुष्य का शरीर यदि दो तो मुझे ब्रज वृंदावन में देना, और मेरे यदि कर्म फूटे हुए हैं, मेरा कर्म फूटा है, मेरे कर्म गलत हैं, और यदि मुझे पत्थर बनाना हो तो प्रभु मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूं, पाहन हो तो वही गिरी को जो, पाहन हो तो वही गिरी को जो। यदि पत्थर बनाना हो तो वृंदावन में गोवर्धन की तलेटी में एक छोटा सा पत्थर बना देना, ताकि पत्थर बनकर भी भगवान कृष्ण का दर्शन करता रहूं। प्रभु प्रभु, यदि मेरे कर्म और फूटे हुए हो और मुझे पक्षी बनाना हो, जो खग हो तो कहां बस मेरो, कालिंदी कुल कदंब की नारन। जो खग बनाना हो, जो यदि पक्षी बनाना हो तो कालिंदी के किनारे, यमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर एक पक्षी बना देना, ताकि वृंदावन में विहार करने वाले कृष्ण का निरंतर दर्शन करता रहो। इस प्रकार से वृंदावन छोड़कर कृष्ण कहीं नहीं जाते हैं, ऐसे वृंदावन ऐसे मथुरा में वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा है। विवाह हुआ तो हुआ, कैसा विवाह हुआ? आज की तरह नहीं। आज विवाह होता है तो एक दिन भी नहीं, 3-4 घंटे में विवाह करके वापस आ जाते हैं। और आज से 50 वर्ष पहले हमारे बाप दादाओं ने जो विवाह किया, 1 दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक बारात रहती थी। परंतु यह वसुदेव जी की देवकी जी के वहां बारात 15 दिन के लिए रुकी थी। 15 दिन तक मेहमान नवाजी हुई, आदर सत्कार हुआ, और 15वें दिन वसुदेव की बारात जब वापस लौट रही थी, सुखदेव गोस्वामी उस दृष्ट का वर्णन करते हैं। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, और राजा देवक क्योंकि वह छोटी कन्या थी इसलिए अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम कि प्रेम के वश में होकर देवकी को दहेज में बहुत धन और संपत्ति दिया। असल में दहेज उसे कहा जाता है जो लड़की वालों से मांगते हैं और वह देते हैं, परंतु यहां पर वसुदेव जी ने मांगा नहीं था, वसुदेव के घर पे कोई कमी नहीं थी। दहेज शब्द गलत में बोल दिया हूं, परंतु भेंट में दिया, भेंट दिया। कितना सुखदेव गोस्वामी यह भी गिना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी गिनाते हैं, चतुर्दशम परिबरहम गजानाम हेम मालिनम। चतुर्दशम कहते हैं चतुर्था 4 और शतम अर्थात 100, 400 गजानाम 400 हाथी भेंट में दिए। आजकल की तरह हाथी नहीं, गजानाम हेम मालिनम, हेम का अर्थ है सोना, सोने से लथपथ, गले में सोने का मोटा मोटा हार, पांव में घुंघरू, और हाथी के ऊपर जो अंबाड़ी होती है वह भी सोने की, सब कुछ सोने से हाथी को मढ़ा हुआ, और चेन जो गले में जो भी पहनाया था वह भी हाथी के साइज का। आज इस संसार में छोटा सा पतला सा सोने का चेन पहन लेता है तो व्यक्ति 1.5 फुट ऊपर चलता है कि गले में पहना है कुछ। आज से 5000 वर्ष पूर्व कंस और देवक ने जो भेंट दी थी वसुदेव को, सोन हाथी पशुओं को सोने से भरकर सोने का गहना पहना कर दिया, वास्तव में हमारा भारत बहुत धनी था उस समय। आप सुनेंगे इतना ही नहीं, 400 हाथी सोने से मढ़े हुए और अश्वानाम युतम सार्धम और 15,000 घोड़े दिए, 15,000 घोड़े। और यह घोड़े के ऊपर सब सोने से, चैन सोने का सब पांव में पहनाया गया, सब कुछ सोने से बना हुआ। 400 हाथी, 15,000 घोड़े, सार्धम रथानाम च त्रिशत पदम, त्रिशत शतम, और 18,000 सोने के रथ प्रदान किए। 18,000 सोने के रथ, और एक एक रथ में 4-4 घोड़े लगे थे, और उस घोड़े में भी सोना सब लगा हुआ था। वास्तव में हमारा भारत आज भी इतना धनी होता यदि ब्रिटिश लोगों का शासन हमारे भारत ऊपर नहीं आता। हमारा भारत बहुत धनी था। इस विश्व के नक्शे में यह जो जगह हम जहां पर रह रहे हैं, सबसे सांस्कृतिक भारत और सबसे धनी भारत था। लेकिन भक्ति नष्ट हुई, और प्रभुपाद जी एक कहते हैं कि इस भारत के ऊपर गाय का वध होने लगा और लोग पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करने लगे, इसलिए यह भारत आज भिखारी हो गया। भिखारी से भी बदतर स्थिति भारत की आ गई। सब लोग पाश्चात्य देशों की नकल कर रहे हैं। जब तक इस पृथ्वी पर गाय का खून गिरना बंद नहीं होगा, गाय का कत्ल बंद नहीं होगा, तब तक इस भारत में शांति नहीं आ सकती है, इस भारत में ऐश्वर्य धन नहीं आ सकता। भारत बहुत धनी था। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 500-400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1,800 रथ और 200 दासियां, दासी नाम सुकुमारी नाम, बूढ़ी नहीं सुकुमारी, द्वेशतम सम अलंकृत, 200 दासी थी और वह भी गहने के साथ, सब कुछ साड़ियों के साथ। हम हमारे घर पर 15 मिनट के लिए बर्तन मांजने वाली आती, उसको पगार देना भी भारी पड़ जाता है। राजा देवक ने 200 दासी दे दी कि जाओ इसको बर्तन मांजने में, कपड़ा धोने में इसको हेल्प करना, देवकी को थोड़ा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। 200 दासी फुल टाइम दे दिया। तो ये तो सब जो रास्ते में दिख रहा है, सुखदेव गोस्वामी रास्ते में जो दिख रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। अंदर क्या चेक दिया होगा, कितना नकद दिया होगा, यह बात भागवत में नहीं है। लेकिन आप कल्पना कर लीजिए, बाहर से इतना कुछ दिख रहा है तो कितना कितना भेंट में दिया होगा। तात्पर्य यह है, कंस और देवक देवकी से बहुत प्रेम करते थे। आज का एक छोटा सा पिता भी अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी पुत्री का विवाह करता है, ये तो राजा थे। तो इस प्रकार से भेंट में दिया, और कंस इतना प्रेम अपनी बहन के साथ देवकी के साथ कहते हैं कि पति प्रग्रहिणम कंसम भाष्या हा शरीर वाक, कहते हैं कि जब 1400 रथ लाइन में खड़े रह गए, देवकी और वसुदेव की, वसुदेव जी का रथ बीच में खड़ा था, और ढोल नगाड़े पखावा तुरही सब कुछ बजने लगा, बाजा बजने लगे, फटाके फूटने लगे, और देवकी और वसुदेव रथ के ऊपर आरूढ़ हुए। उस समय केवल ऑर्डर देना था, सारथी रथ चलाने वाला था। उस वक्त कंस इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, वह अपनी बहन के रथ के सारथी को नीचे उतारा और वह स्वयं रथ चलाने के लिए बैठ गया। लगाम हाथ में ले ली और स्वयं रथ चलाने लगा। भागवत में तो नहीं है, परंतु आचार्य गण अपने टीकाओं में कहते हैं, जैसे ही कंस रथ चलाने लगा सारे देवता लोग टेंशन में आ गए। सारे देवता लोग मीटिंग करने लगे, यदि कंस ने देवकी और वसुदेव की सेवा की तो भगवान तो अपने भक्त की छोटी सी सेवा से प्रसन्न हो जाते। कंस ने यदि देवकी और वसुदेव की सेवा कर दी तो कृष्ण कभी कंस को नहीं मारेंगे, और यदि ये सेवा कर दिया तो फिर ये पृथ्वी का भार दूर नहीं होगा, साधुओं को आनंद नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी। क्या करे क्या करे, देवताओं से रहा नहीं गया और देवताओं ने आकाशवाणी की, तू जिसका रथ चला रहा है, तू जिसका रथ चला रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। तू जिसकी सेवा करने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी, अरे मूर्ख। बस इतना कहके देवता लोग चले गए। यह नहीं बताया कन्या के पुत्र, संतान कह दिया। कंस तो सोच में पड़ गया कि आकाशवाणी देखा कि आकाशवाणी कभी झूठ नहीं हो सकती है। तुरंत कंस देखिए असुरों का स्वभाव, एक क्षण में अपनी बहन से इतना प्रेम करता था कि अपनी बहन का रथ कंस स्वयं चलाने बैठा, परंतु जैसे ही आकाशवाणी हुई तुरंत कंस ने वह लगाम नीचे रख दी और देवकी का बाल पकड़कर खड़ग से तलवार निकालकर देवकी का सिर काटने गया। देखिए कंस इतना क्रूर था। वास्तव में असुरों का स्वभाव बाहर से कुछ अलग होता है, अंदर से कुछ अलग होता है। एक क्षण में अपनी बहन से इतना प्रेम जता रहा था, दूसरे ही क्षण में देवकी के बाल पकड़कर सिर काटने गया। कहते हैं वसुदेव जी बहुत आशावादी थे, बहुत धीर गंभीर थे। तुरंत वसुदेव ने कंस का हाथ पकड़ लिया, कहा कंस आप किसे मारने जा रहे हो? कंस किसे मारने, आप किसे मार रहे हो? ये आपकी बहन है, स्त्री है। बहुत सुंदर उपदेश वसुदेव जी ने कंस को दिया है। ये सब लोग रथ पे बैठे हैं, रथ पे खड़े खड़े वसुदेव जी। वहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि में वासुदेव, वसुदेव के पुत्र ने अर्जुन को उपदेश दिया। यहाँ पर उनके पिता वसुदेव जी कंस को उपदेश दे रहे हैं। बेटा बाप पर ही गया है पूरा बाप बेटे दोनों एक कहा होता है ना, बाप जैसे ही बेटे होते हैं। वसुदेव जी उपदेश दिए कंस को, कंस अरे तेरी बहन है, स्त्री का कभी वध नहीं करना चाहिए। 10 प्रकार के लोगों का कभी वध नहीं करना चाहिए। 10 प्रकार के लोगों का कोई वध करता है तो उसे कायर माना जाता है। कहते हैं जिसके पास अस्त्र नहीं है उसका वध नहीं करना चाहिए। जिसके पास रथ नहीं है, जो पागल है, जो मूर्ख है, जो नशे में है, जो नींद में है, बालक और स्त्री के ऊपर कभी वार नहीं करना चाहिए, उनका वध नहीं करना चाहिए। उनका वध करने वाला कायर माना जाता है और उसकी अपकीर्ति होती है। मत मारो तुम, कंस नहीं माना। वसुदेव जी ने बहुत समझाया। वसुदेव जी नीतिज्ञ थे, गुणवान थे, वे सब कुछ जानते थे कि एक व्यक्ति को समझाने के लिए किस प्रकार से समझाया जाता है। 4 प्रकार से किसी व्यक्ति को समझाया जाता है, श्याम, दाम, दंड और भेद। वसुदेव जी जान गए कि दाम और दंड के द्वारा तो ये मानने वाला है नहीं, श्याम और भेद के द्वारा समझाया जा सकता है। वसुदेव जी ने समझाया परंतु कंस माना नहीं। बहुत बहुत वसुदेव जी ने उपदेश दिया। वसुदेव ने पूछा आखिर तुम इसे क्यों मार रहे हो? कंस ने कहा मैं इसे नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो वसुदेव ने कहा कि इस संसार में कौन नहीं मरने वाला है बताओ? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म के दिन ही व्यक्ति मृत्यु की तारीख को लेकर आता है। कौन नहीं मरने वाला है? यदि मरना ही है तो कीर्ति के साथ मरो, अपकीर्ति लेकर क्यों मरना चाहते हो? और इस प्रकार से यदि पाप करके मरोगे तो तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी, तुम नरक में जाओगे, इसलिए तुम ऐसा कार्य मत करो। तो इस प्रकार से वसुदेव जी देवकी को, कंस को उपदेश दे रहे हैं। तो देने दीजिए वसुदेव जी को उपदेश। अब इसके बाद जिसका प्रवचन होगा हम प्रार्थना हमारा ही होगा। ठीक है, तो हमारे कमांडर की आज्ञा है, वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा है कि 20 मिनट आरती करेंगे, फिर यह प्रवचन कंटिन्यू करेंगे।